17 जुलाई 1967 तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम पढ़ रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। कल पहले मिसल ही हम पढ़ रहे हैं, अर्थात अपने तन मन धन से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं और श्रीमत पर चल करके बादशाही स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितनी अपनी मत ईश्वर के अनुसार चलावेंगे, अर्थात मन को अमन कर देंगे, धन से सेवा करेंगे श्रीमत के अनुसार, वो उतना ही ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, कन्याएं माताएं तो कोई वारिस होती नहीं है, वर्षा तो बच्चे को ही मिलता है। कन्याओं माताओं को धन नहीं है तो बाकी रहा तन और मन। मन को अमन करना मना बाप को याद करना है। तन का मुख्य अंग है मुख, तो मुख से सेवा करनी है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, गीता पाठशालाएं तो बहुत बहुत खुली हुई है और गीता है ही एक धर्मशास्त्र। हर एक धर्म का एक शास्त्र तो होता है, परंतु इन भारतवासियों के तो ढेरों शास्त्र हैं और उनमें जो मुख्य गीता है वो भी झूठी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। नाम से ही साबित होता है भगवान की गाई हुई है, श्री श्री भगवान को कहा जाता है। देवताएं तो श्री श्री नहीं बनते हैं, उनको कहेंगे श्री। बाप में जो गुण है वो देवताओं में नहीं हो सकते। देवताओं के क्या गुण है? सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये गुण बाप के नहीं हो सकते। बाप अगर इन गुणों को धारण करे तो नई दुनिया नहीं आ सकती। अभी तुम्हारे में जो नॉलेज है वो देवताओं में नहीं रहेगी। अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा दे रहे हो, देवताओं में ये नॉलेज रहेगी नहीं सतयुग में। फिर अविनाशी ज्ञान रत्न कैसे हुए? अविनाशी ज्ञान रत्नों की प्रारब्ध होगी। चलो सतयुग त्रेता में तो प्रारब्ध होगी, फिर तो इन ज्ञान रत्नों का विनाश कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये ज्ञान रत्न अविनाशी इसलिए है कि जो यहाँ इनको धारण करता है और जितना धारण करता है वो प्रैक्टिस पड़ी हुई रहती है, द्वापर कलयुग में भी वो काम आती है। इसलिए बोला कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा तुम दे रहे हो। बाप कहते हैं कि बहुत बड़ा दुकान खोलना चाहिए, इन ज्ञान रत्नों का सौदा करने से तुमको बहुत फायदा होगा। खान पान तो सबको मिलना ही है, बड़ी दुकान खोले या छोटी दुकान खोले, ऐसा कोई नहीं होगा बच्चा जिसको कोई जन्म में खान पान भी ना मिले। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए रत्नों का सौदा कोई ले जावे। जो भी आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं। खुश हो जाते हैं तो जरूर बाप के साथ पास आवेंगे। कहते हैं बाबा कोई सेवा हो तो बताओ। बाबा कहेंगे यह बच्चे जैसे सेवा कर रहे हैं, तुम जिसकी सेवा लेकर के इतना खुश हो रहे हो वो सेवा तुम भी करो। जितना धारणा में होगा उतना करके दिखावेंगे। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा तो होती है ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी पाठशाला है, पाठशाला में सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, और पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है नरसिंह नारायण जैसा बनना और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना। इस पर ही नाम पड़ा है तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा। ये कथा तीसरा नेत्र खोलती है ना। तुमको अमर बनाती है ना। सत्य को धारण करने वाला बनाती है ना। अभी तुमको बाप ने और षष्ठी की आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। बाप का परिचय दिया, षष्ठ की आदि मध्य अंत का परिचय दिया, तो तुम धनी के बन गए। पहले तुम वैश्यालय में थे, अभी तुम शिवालय में जा रहे हो। शिवालय सतयुग को कहा जाता है। क्यों? सतयुग में शिव होता है क्या? फिर शिवालय क्यों कहा जाता है? आले माने घर, शिव का स्थापन किया हुआ घर है, इसलिए शिवालय कहा जाता है। और वैश्यालय कलयुग अंत को कहा जाता है। सतयुग आदि है शिवालय और कलयुग अंत है वैश्यालय। अभी कलयुग है ना, कोई धनी का नहीं है अर्थात आस्तिक नहीं है, क्योंकि बाप को नहीं जानते। बाप को जानते हैं, मानते हैं, बाप के कहे अनुसार चलते हैं, बना पूरे आस्तिक है। तुम जानते हो कि यहां पर कितने मनुष्य हैं? यहां के मनुष्यों की संख्या और सतयुग के मनुष्यों की संख्या, समझ तो सकते हैं ना? बात बहुत सहज है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आवेगा। झूठ खंड के बाद जरूर सच्चे खंड बनेगा, बनाने वाला भी चाहिए। सच्चे खंड में कोई एक तो नहीं होगा, सच्चे खंड सच बोलने वालों का खंड। बाप सच्चा है ना, तो सच्चे खंड की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे सहयोगी बनते हो, जो झूठ ही झूठ चलाते हैं वो तो सच्चे खंड में आवेंगे नहीं। अभी बाप तुमको राजयोग सिखा कर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, सत धर्म की स्थापना होगी तो असत धर्मों का विनाश जरूर होगा। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, लक्ष्मी नारायण की सच्चाई की पावर कितनी है, सारी दुनिया में जो झूठ खंड की राजाइयां चल रही है सब का विनाश हो जाता है और एक राजाई रह जाती है। पहले पहले जिन लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है उनको कहेंगे ऊंचे ते ऊंचे, तो तुम बच्चे जानते हो हमको श्री श्री की मत पर चल करके श्री बनना है, सबका सदगति दाता एक है, उनको ही सदगुरु कहेंगे। सदगुरु भी तो नाम है ना, नाम साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? एक ही नाम है जो बिंदु का नाम है शिव, और बाकी सब नाम साकार के होते हैं। और जो भी गुरु है सब भक्ति मार के हैं, वो सब है नीचे ले जाने वाले। झूठ खंड में ले जाते हैं। कितनी सहज नॉलेज है, सिर्फ समय लगता है जन्म जन्मांतर के पाप विनाश करने के लिए। याद में ठहरने में टाइम लग जाता है, इसके लिए बाप को याद करो, बाप की ही महिमा करो। ईश्वर हमारा बाप है, यही बात कोई नहीं समझते है। ईश्वर माना, ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ शासन करने वाला है दुनिया में, और जो भी शासन करने वाले हैं वो उतने श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि जो भी शासन करता हुए है द्वापर कलयुग में, सबने कुछ न कुछ हिंसा की है। बाप आते हैं अहिंसक धर्म और अहिंसक राज्य की स्थापना करने, इसलिए उनका नाम है ईश्वर। इस बात को कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझो बच्चों को समझाते हैं और बच्चे ही समझते हैं। कौन सा बाप समझाते हैं? बच्चों की और बाप की शिफ्ट क्या है? बाप भी रूहानी है और बच्चे भी रूहानी है। जो जिस्मानी स्टेज में रहते हैं वो बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, और जो रूहानी स्टेज में स्थित हो जाते हैं वो बाप की पढ़ाई पढ़ लेते हैं। कितनी है रूहें जो बाप की पढ़ाई पढ़ती हैं? साढ़े चार लाख हैं, वो भी नंबरवार। तो ऐसे नंबरवार बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जितना जितना बाप की मत पर चलेंगे उतना ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बनेंगे। ऑलराउंडर श्रेष्ठ बनेंगे, लेकिन नंबरवार। ब्राह्मणों की अभी अंधेरी रात है। क्यों है? किसके आधार पर अंधेरी रात है? ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, तो मुख्य निमित्त कौन हुआ? इस बात में निमित्त है। वो ऐसी कौन सी खास बात है जिसमें वो निमित्त बन जाता है? गीता का भगवान बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का साकार भगवान कौन है। तो जब तक ब्रह्मा की रात है तब तक ब्राह्मणों की भी रात है। उसे एक के ऊपर सारा मदार है, या कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की रात है। प्रजापिता के लिए नहीं कहते हैं कि प्रजापिता की रात प्रजापिता का दिन, क्योंकि प्रजापिता के मुकर्रर रथ में परमात्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। जहां सूर्य होता है वहां अज्ञान अंधेरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम बच्चे दिन लाने के लिए पढ़ते हो। कलयुग को घोर अंधेरा कहा जाता है और सतयुग को घोर सोजरा कहेंगे। अपने आप अंधेरा और सोजरा होता है क्या? या कोई निमित्त बनता है? कौन निमित्त बनता है घोर सोजरे के लिए और कौन निमित्त बनता है घोर अंधेरे के लिए? एक है स्वर्ग लाने के निमित्त। क्या तरीका है स्वयं स्थिति से स्वर्ग आता है और परचिंतन से नरक आता है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं जहां तक भी ये अंदर और बाहर की आंखें जा रही है वो सब भस्म होने वाला है। और तीसरे नेत्र से हम जो कुछ भी देखते हैं, जो तीसरा नेत्र बाप ने दिया हुआ है वही अविनाशी है। तो बोला सतयुग और कलयुग की रिहर्सल कब होती है? अभी संगम युग पर रिहर्सल होती है। रिहर्सल नहीं करते हो तो जरूर पॉइंट्स भूल जाते हो। पॉइंट्स का एक किताब होना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स के पास किताबें रहती है। तो तुम बच्चों को भी नोट्स रखने चाहिए। पढ़ाई कितनी अच्छी है तो क्यों नहीं नोट रखना चाहिए? कितना अटेंशन रखना है तुम जानते हो। हमको अपने ही तन मंधन से अपनी बादशाही स्थापन करनी है। इसके लिए हम कोई से लोन नहीं लेते, भीख नहीं मांगते, मदद नहीं मांगते। हूबहू जैसे कल्प कल्प करते आए हो, फॉलो फादर। उनको एक्टिविटी में फॉलो करना है। एक्टिविटी में चल करके फॉलो करना है। तुम बाबा को तो पुरुषार्थ नहीं करना। तुमको बाबा को कहना नहीं है कि पुरुषार्थ करना है। बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है या करने वाला है? ये दादा तो तुम्हारे ही साथ है, बाबा तुम्हारे साथ नहीं है। माना पढ़ाई पढ़ने में ये दादा तुम्हारे साथ है, और ये तो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे ब्रदरहुड शुरू हो जाता है, तुम्हारी ब्रादरी शुरू हो जाती है। कौन सी ब्रादरी शुरू होती है इनसे? ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई जाती हैं, तो बाप से कौन सी बिरादरी शुरू होती है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो कौन सी बिरादरी शुरू करते हैं? सूर्यवंशी बिरादरी शुरू करते हैं, फिर चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, नंबरवार सब है। फ्लावर वाज होता है ना, इस समय तना नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है, किसका राज्य है? रावण का राज्य है। रावण राज्य का सरपरस्त कौन है? भक्ति मार्ग में रावण को जलाते हैं, वो तो स्थूल पुतला बना करके जलाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? हैं? शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, परंतु यहां तो जलाने करने की कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं कि उन पॉइंट्स से जो रावण संप्रदाय है वो सुनकर के जल मरते हैं। फिर भी रावण हर वर्ष बड़ा होता जाता है। भक्ति का कर्म कांड और ही लंबा चौड़ा होता जाता है। तो तुम बच्चों को अब श्रीमत पर पूरा ही चलना चाहिए, बाप को फॉलो करो, करके ऊंच पद पाना है। अभी गफलत करने का समय नहीं है, तुम बच्चों को कल्याणकारी बनना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो धनी के नाम पर खर्च कर दो, हिम्मत करो। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। दुकान निकालो, देखो जयपुर का सेंटर कितना खर्चा खा रहा है। हैं? अब व्यक्तवाणी में अभी जयपुर के बारे में कुछ बोला? क्या बोला? हैं? दो नाम तो फिक्स हो गए, बाकी 3 और बचे हुए हैं। वो 3 के लिए बोलते वो जयपुर का सेंटर कितना खर्चा खा रहा है। ये मकान आदि भी बच्चों के लिए बनाते हैं। यहां पर अंत में जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वो आवेंगे कहाँ है
दिल्ली
माउंट आबू में वो तो जयपुर की बात हुई तो यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे आवेंगे देखेंगे कि अभी तो मौत आ रहा है तो चलो बाबा के पास ही जाकर के मरे भक्ति मार्ग में सब है झूठ और ज्ञान मार्ग में सब है सच्चा यहाँ बाप ही सच्चे सच्चे सुनाते हैं अच्छा बच्चों को गुड नाइट ये किसने किया जिसका यादगार सनसेट पॉइंट बना हुआ है नहीं तो क्या करना चाहिए गुड मॉर्निंग करना चाहिए मॉर्निंग आने वाला है ना क्या आने वाला है एक है दुखधाम एक है सुखधाम और एक है शांति धाम तो क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है दुखधाम को याद नहीं करना है और सुखधाम को शांति धाम को याद करना है ओम शांति अगला प्रातः क्लास है 18/7/67 का रिकॉर्ड चला है आखिर वो दिन आया आज रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं रूहानी बाप रूह बन करके समझाते हैं क्या सिर्फ रूह बन करके रहे तो पढ़ाई पढ़ावेंगे क्या समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा आत्मा शरीर बिना कोई काम नहीं कर सकती रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है पड़ता है माना वो भी लेना नहीं चाहते लेकिन बच्चों के कल्याण के लिए शरीर लेना पड़ता है और ये संगम युग भी है इनको पुरुषोत्तम युग कहेंगे क्योंकि इस संगम के बाद ही सतयुग आता है सतयुग को भी पुरुषोत्तम और ये भी पुरुषोत्तम युग है बाप आकर के स्थापना भी पुरुषोत्तम संगम युग की करते हैं मां के रूप में आकर स्थापना करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की पुरुषोत्तम कहा कब जाता है जब पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माओं की नंबर वार प्रत्यक्षता होती है तो बाप आकर के स्थापना करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की संगम पर आते हैं तो जरूर वो ही पुरुषोत्तम युग है और यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यहाँ ही मना कहा संगम पर ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, ऐसे कि नहीं सतयुग में पुरुषोत्तम बनेंगे। अगर सतयुग में पुरुषोत्तम बने तो फिर कृष्ण को क्या कहना चाहिए? कृष्ण को पुरुषोत्तम कहना चाहिए, परंतु बाप कहते हैं पुरुषोत्तम बनाता हूं संगम पर, प्रत्यक्षता होती है संगम युग पर। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, ये लक्ष्मी नारायण है सबसे उत्तम पुरुष। और इस बात का ज्ञान भी तुमको है, किनको? तुमको माना किनको? तुम सूर्यवंशियों को इस बात का ज्ञान है। किस बात का? कि पुरुषोत्तम कौन है। और धर्म वाले भी मानेंगे तो, लेकिन बाद में मानेंगे, अभी उनकी बुद्धि में नहीं है कि पुरुषोत्तम कौन है। मानेंगे बरोबर ये हैविन का मालिक है, कौन? लक्ष्मी नारायण। भारत की महिमा बड़ी भारी है, परंतु भारतवासी ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? भारतवासी जो सतयुग त्रेता में भारतवासी थे, फिर द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हो गए, वो भारतवासी नहीं जानते। कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, परंतु कोई स्वर्गवासी होते हैं क्या? फिर इसी नरक में जन्म लेते हैं या स्वर्ग में चले जाते हैं? तो कहां की यादगार बोलते रहते हैं? संगम की यादगार है। स्वर्ग क्या चीज है अभी तो उनको वो भी पता नहीं है। आप ही सिद्ध करते हैं कि वो स्वर्ग में गया, बोलते तो है ना, तो मानते हैं कि जरूर अभी नरक है, तब कहते हैं नरक से स्वर्ग में गया, वो भी पहले नरक में था और अपन को भी नरक में समझते हैं। बात तो ठीक है, हैविन तो तब हो जबकि बाप आकर के स्थापन करे, वो तो नई दुनिया को कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। स्वस्थिति माना स्वर्ग, वहां कोई पांच तत्वों की याद में नहीं रहता, सब स्वस्थिति में रहते, कोई पर चिंतन नहीं करता, सब स्वचिंतन में रहते हैं, वो है स्वर्ग। और उसके मुकाबले ये है नरक। स्वर्ग की स्थापना सदा काल स्वयं स्थिति में रहने वाला सदा शिव करता है, और नरक की स्थापना कौन करता है? जो देह के चिंतन में रहता है सदा काल, वो नर ही नरक की स्थापना करता है। तो दो बातें हैं, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष का कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि कल स्वर्ग था, तब इन्होंने राजाई ली थी, अब फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, अभी तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए तुम हेल में हो। जब आत्मा पावन बन जावेगी तो तुम सदा काल के लिए स्वयं स्थिति में स्थित तो हो जावेंगे, स्वर्ग में चले जावेंगे। बल कहते हैं कि कलयुग 40,000 वर्ष का है, फिर भी कलयुग ही तो है ना, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी तो प्रीति बुद्धि है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीति बुद्धि है। जितना जितना प्रीति बुद्धि होगी उतना ही ऊंच पद पावेंगे। सवेरे उठ करके बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भले प्रेम के आंसू भी आ जावे, क्योंकि बहुत समय के बाद आकर के बाप मिलता है। तो सोचना चाहिए, बाबा आप तो हमको दुख से आकर के छुड़ाते हो, हम बार बार विषय सागर में गोते खाते हुए कितने दुखी होते आए हैं, और अभी तो ये रौरव नरक है। विषय वैतरणी नदी में सभी पड़े हुए हैं। परंतु अभी तुम बच्चों को बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया। मूल वतन क्या है? पहले तो तुम नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो उसकी निशानी क्या होगी? जो मूल वतन को जितना जानते हैं उतना मूल वतन की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करेंगे। ज्ञान मिलता ही है मूल वतन, स्थूल वतन का। स्थूल वतन के भी दो हिस्से हैं, सुखधाम और दुखधाम। जिनकी बुद्धि में बैठता है वो इस दुखधाम को याद करने का प्रयास नहीं करेंगे, भूलते जावेंगे। पहले तो तुम भी नहीं जानते थे, कि मूल वतन क्या है। अपन को पतित भ्रष्टाचारी अपने आप ही अपने को कहते थे, इनको कहते हैं कांटों का जंगल और स्वर्ग को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। तो जरूर अल्लाह ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फूलों का बगीचा है, बाप को बागवान कहते हैं ना, तो फिर तुमको फूलों से फिर कांटा कौन बनाते हैं? तुम कहेंगे रावण बनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर भारत स्वर्ग था, अभी जंगल है। जंगल में आग लगती है, बगीचे में आग क्यों नहीं लगती? बगीचे में पानी रहता है, हरियाली होती है, सरसब्ज होता है, और कांटों का जंगल सूखा हुआ होता है। वो ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए आग लगती है। अभी जंगल है, जंगल में तो जानवर है, बिच्छू टिंडन आदि सब कुछ रहते हैं। सतयुग में तो कोई भी खौफनाक जानवर आदि नहीं होते, और यहां तो कितने खौफनाक जानवर हैं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगाए दिए, दिखाते हैं कृष्ण को सांप ने डसा, फिर ये हुआ। और कृष्ण को ही फिर द्वापर में ले गए हैं, अब सांप के डसने की बात तो है नहीं। बाप ने समझाया है, ये भक्ति तो बिल्कुल अलग चीज है। दुर्गति में गिराने वाली है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा व शंकर व विष्णु कोई ज्ञान के सागर है, है? कौन है ज्ञान का सागर? ज्योतिबिंदु है बाबा, विष्णु या ब्रह्मा? ब्रह्मा के तन में शिव नहीं होता क्या? शिव तो होता है, लेकिन मां के रूप में पार्ट बजाता है। मां के द्वारा सदगति नहीं होती, सदगति बाप के द्वारा होती है। तो भला कहेंगे कि विष्णु सागर नहीं है, ब्रह्मा सागर नहीं है, और शंकर भी सागर नहीं है, लेकिन शंकर में शिव समाया हुआ है। तो जिनकी आंखें शिव को देखती हैं, किसमें? शंकर में, तो उन्हें याद रहता है, वो स्थिति बनी रहती है, फॉलो फादर बन जाते हैं। पतित पावन एक ही ज्ञान के सागर को कहेंगे। वो कौन है, किस रूप में है? ब्रह्मा रूप में है, विष्णु रूप में है, या कोई भी 33 करोड़ देवताओं के रूप में है? एक ही रूप है जिसको ज्ञान सागर कहेंगे। उसे एक के द्वारा ही सदगति होती है, बाकी अनेकों के द्वारा दुर्गति होती है। एक है सदगति दाता और मनुष्य गुरु है दुर्गति दाता। इसलिए हर घर में स्लोगन टंगा हुआ होना चाहिए, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। सदगति के स्थान दो है, कौन कौन से? शांति धाम और सुख धाम। तुम पहले कहां जावेंगे? क्यों सीधे सुख धाम क्यों नहीं जा सकते? है सुख धाम में जाने के लिए स्वस्थिति में पक्का होना पड़े, शरीर के साथ। तो इस शरीर में रहते जब तक स्वस्थिति में पक्के नहीं हो जाते और उसकी पूरी परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सुखधाम में नहीं जा सकता। तो सदगति के दो स्थान है, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये राजधानी स्थापन हो रही है और गुप्त राजधानी स्थापन हो रही है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाप आकर के ब्रह्मा तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर मनुष्य गुरु बैठ करके स्वर्ग की स्थापना करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं, बाप ही आकर के सब धर्म की स्थापना करते हैं और साथ साथ सत्य राज्य की भी स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सभी धर्म पिताएं तो अपने अपने चोले में आते हैं। जिस चोले में आते हैं उस चोले का उनको संग का रंग भी लगता है, कोई भी धर्म पिता हो। और बाप को तो अपना चोला है ही नहीं, तो उनको संग का रंग भी नहीं लगता है, इसलिए इनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। वो धर्म पिताएं बल निराकारी स्टेज में आते हैं, परंतु बाद में क्या होता है, निराकार से संग के रंग में आकर साकारी बन जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। जिसमें आते हैं वो भी नीचे गिरता जाता है और बाप स्वयं निराकारी है। जिस पतित से पतित तन में आता है बल वो साकारी है, परंतु उसको भी निराकारी बनाता है। खुद तो निराकारी है ही और निराकारी बनाकर शांति धाम ले जाता है। शांति धाम है मूल वतन, मूल वतन की मूल स्थिति में जो आत्मा जितना जल्दी स्थित हो जाएगी उतना ही ऊंच पद पावेगी, ऊंच नंबर बनेगा। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। ये इनकॉर्पोरियल आत्माओं का गॉडफादर है, कॉर्पोरियल आत्माएं कौन सी हुई जो इस दुनिया के रहते रहते, इस पुरानी दुनिया के रहते रहते इनकॉर्पोरियल स्टेज को धारण नहीं कर पाती, निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर पाती, देहभान में रह जाती है, उनको फिर कहेंगे कॉर्पोरियल आत्मा और तुमको कहेंगे इनकॉर्पोरियल गॉडफादर के इनकॉर्पोरियल बच्चे, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। तुम आत्माएं भी वहां ही रहती हो क्या? तुम भी इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहती हो और वो आत्माएं जो इस दुनिया में रहते रहते इन कॉर्पोरियल नहीं बन पाती, कॉर्पोरियल ही रह जाती है, वो भी कहां की रहने वाली है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड की रहने वाली है। फिर अंतर क्या है? तुम पहले पहले निराकारी दुनिया में जाते हो और वो बाद में जावेंगे, बाद में जावेंगे तो साकारी सदगति की दुनिया में बाद में आवेंगे। बाप भी वहां रहते हैं, तुम भी वहां रहते हो, वो भी वहां रहते हैं, सब एक ही धाम के वासी। फिर स्टेजेस में क्या अंतर है? तुम हो ऊंचते ऊंच, ऊंची स्टेज के वासी, और वो है नंबर वार नीची स्टेज के वासी। इसलिए परमधाम का जो चित्र बनाया है उसमें आदि सनातन धर्म की आत्माओं को ऊपर और दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा उनके धर्म पिताओं को नीचे नीचे दिखाए। वहां पर मूल वतन में कोई भी आवास का गम नहीं है क्या? कोई भी प्रकार का आवास का गम नहीं है। और यहां कोई प्यारा होता है उसकी आवाज सुनने को नहीं मिलती है तो गम हो जाता है। वहां तो कोई भी गम नहीं, सूक्ष्म वतन का तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो चिटचैट की बात है। तुम पियर घर से ससुर घर जाते हो, तो संगम पर मिलते हैं, वो है बीच की मुलाकात। वो मुलाकात होती है सूक्ष्म वतन में, बाकी तो वहां पर कुछ भी रखा हुआ नहीं है। और सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है, जैसे स्वप्न है वैसे ही साक्षात्कार भी है। बस अठारह 767 की वाणी का दूसरा पेज। तुम बच्चों को ये अंडरस्टूड है कि हमें वर्षा तो बाप का मिल नहीं है, हम कोई देवताओं से या सूक्ष्म पतनवासी फरिश्ताओं से वर्षा लेने वाले नहीं है। अलफ को याद किया तो वर्षा तो है ही है। वर्षा है सतयुग नई दुनिया का, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, और जिसका विनाश होना है उससे वैराग आना चाहिए। कहते ही हैं ज्ञान भक्ति और वैराग, तो आखिरी ऊंची स्टेज कौन सी है? वैराग। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बिन वैराग विवेक न होई। जब तक सच्चा वैराग नहीं आता है दिल के अंदर से, तब तक ज्ञान की पैदाइश नहीं होती है। सच्चा ज्ञान धारण ही वो करते हैं जिनके अंदर वैराग आ जाता है इस पुरानी दुनिया से। पुरानी दुनिया के भक्ति मार्ग ही है कर्म कांडों से, तो कहा जाता है ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। तुम्हें अमरपुरी में जाना ही है, अभी अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुनाए रहे हैं, बाकी तो सभी बातें हैं गपोड़े। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं और अमरनाथ पर कितने जाते हैं? ऐसे तो वहां अमरनाथ पर कुछ भी नहीं है, सभी ठगी ही ठगी है। वहां पहाड़ों पर कैसे बैठ करके कथा सुनावेंगे? लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है तो बात कहां की है? पहाड़ों पर क्यों बैठ दिखाया है? जरूर ऊंची स्टेज में बैठ करके पार्वतियों को कथा सुनाई है। वहां भक्ति मार्ग में तो साफ झूठ ही झूठ है, सत्य की तो रत्ती भी नहीं है। तो सब कुछ तिलस्मी जादू गाया जाता है, गाते भी है झूठी दुनिया झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। इन बातों का भी तो अर्थ होना चाहिए ना, यहां पर तो है झूठी झूठ। और ये अभी ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि गिलास को गिलास कहना झूठ है। भक्ति मार्ग में तो सभी कुछ झूठे हैं, और सच बताने वाला एक ही बाप है, बाकी सब झूठ के प्रभाव में आ जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम जानते हो कि झूठे पत्थर झूठे मोती भी होते हैं। आजकल तो जहां देखो वहां झूठ का ही शो बहुत है, इमिटेशन का मार्केट भी होता है, वहां सब कुछ झूठ ही झूठ मिलता है। उनकी चमक ऐसी होती है जो चमक सच से भी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। ये झूठे पत्थर चमक मारने वाले, इतना शोर शराबा करने वाले पहले नहीं थे और अभी अभी तो है। ये सब कहां से आए हैं? ये सब विलायत से आए हैं। इनका निर्माण कहां होता है? विलायत में इनका निर्माण पहले पहले होता है। झूठे और सच्चे दोनों मिलाए देते हैं, मिलाए देते हैं तो पता ही नहीं पड़ता है कौन सा झूठा है और कौन सा सच्चा है। अभी तुमको तो बाप पहचान देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में रहता है क्या? रहता है सच्चे और झूठ की पहचान रहती है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आई है जिनसे परख सकते हैं कि ये सच्चा है और ये झूठा है। मोती भी ऐसे ऐसे झूठे निकलते थे जो जरा भी पता नहीं पड़ता था। अब ये तो है ही सच्चे मोती, कहते भी है कि सच्चे का वो छुप नहीं सकता है। तो बाप जब आते हैं तो आकर के सच्ची कथा सुनाते हैं। उस सच्चाई में तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है। अच्छा, ओम शांति।